करिश्मा जी ने कहा, बेटा तुम ये फल खा लो, तभी मेरी बात समझ पाओगी। तारापरी मन ही मन सोचती रही, ये साधारण फल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे उनकी बात समझने में मदद करेगा। तारापरी ने कहा, वेल, अब खाना तो पड़ेगा ही, वरना इन लोगों को शक भी हो सकता है। तारापरी ने करिश्मा जी के हाथ से फल लेकर खा लिया और बोली, मैम मैंने आपके कहने पर यह फल तो खा लिया, लेकिन आप कह क्या रही हैं? शादी? दो से? एक से? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। करिश्मा जी ने तारापरी को समझाना शुरू किया, मेरे दोनों बेटे तुमसे प्यार करते हैं और वे कोई आम इंसान नहीं हैं। दुनिया की भलाई के लिए तुम्हें पूरा सच जानकर उन्हें दिल से अपनाना होगा। बोलो बेटा, क्या तुम मेरे बेटों से शादी करोगी? करिश्मा जी ने तारापरी को सारी बात समझा दी और तिलिस्मी पत्थर क्या है उसकी पूरी जानकारी दी। तारापरी पहले से ही ये सब जानती थी, सो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसे अपनी एक्टिंग जारी रखनी थी, क्योंकि वो इस तरह एकदम से शादी के लिए हाँ नहीं कह सकती थी। अगर वो खुशी खुशी हाँ देती तो उसका सच उन लोगों के सामने आ सकता था। सो तारापरी ने अपनी आंखों में आंसू ले आए। करिश्मा जी ने तारापरी की आंखों में आंसू देखकर उसे उठाकर गले लगा लिया और बोली, मैं जानती हूँ बेटा, एक लड़की के लिए दो जीवन साथी होना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बेटा कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हमें ना चाहते हुए भी वक्त के फैसले के आगे अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। और बच्चा, जहाँ तक मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है कि तुम एक अनाथ हो, हमारे बगीचे के मालिक को बगीचे के आसपास तुम मिली थी, शायद तुम अनाथ आश्रम से भागी हुई थी। अमन ने तुम्हारे जाने के बाद सब पता किया था। और बेटा थोड़ी ठंडे दिमाग से सोचो, अगर तुम मेरे बेटों से शादी कर लेती हो तो तुम्हें एक परिवार मिल सकता है, वो भी कोई ऐसा वैसा परिवार नहीं, एकदम सुख समृद्धि से संपन्न परिवार। और बेटा ये भी तो सोचो, तुम्हारी शादी करने से कितने लोगों का भला होगा, पूरी इंसानियत को तुम बचा सकती हो, तुम्हारे पेट से जन्मा बच्चा ही आने वाला रक्षक होगा। अब करिश्मा जी ने अपना इंसानी पैंतरा अपनाया जो उन्होंने इतने सालों से इंसानों के बीच रहकर सीखा था। तारापरी कुछ देर इधर उधर टहलने लगी और फिर बोली, ठीक है मैम, मैं आपके बेटों से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर करिश्मा जी खुशी के मारे झूमने लगी और उन्होंने तारापरी को गले लगाकर कहा, कल सुबह ही मैं तुम्हारी तीनों की मंगनी करा दूंगी, तुम जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, मैं ये खुशखबरी अमन और मान को देकर आती हूँ। तारापरी करिश्मा जी को जाते हुए देखती रही और मन ही मन अपना मकसद पूरा होता देख खुश हो गई। वो सोचने लगी, शादी को रोकने के लिए न जाने कितनी काली शक्तियाँ आएंगी, अब मुझे उनसे निपटने की तैयारी करनी होगी। कुछ सोचकर तारापरी अपने कमरे की ओर चलती। उधर काली शक्तियों का मालिक उस लड़की के साथ बदतमीजी करने के बाद काली पहाड़ी पर पहुंच चुका था। इस बार एक भी सांप को देखकर वो नहीं डरा था, उल्टा वो अब अकड़कर चल रहा था और जल्दी ही वो अपने गुरु के सामने था। वहां पहुंचकर उसने अपने गुरु से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो आपने मुझे वहां भेजा। आपको पता है उस तपस्वी की असीम शक्तियां मुझे मिल चुकी हैं, अब मुझसे वो अमन और मान और तिलिस्मी पत्थर नहीं बच सकते हैं। अब आप देखना, बहुत जल्द मैं अमन और मान को मौत के घाट उतारकर वो तिलिस्मी पत्थर हासिल कर लूंगा और आपके तीनों बेटों की हत्या का इस जिन महाराज के परिवार से बदला लूंगा और आपको यहां से आजाद कराऊंगा। देखना गुरुजी, बहुत जल्द इस दुनिया पर आपकी और मेरी हुकूमत होगी। इतना कहकर काली शक्तियों का मालिक जोर जोर से हंसने लगा और अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर वहां से जाने लगा। इधर सर्प महाराज अपनी महारानी सर्पनी से मिल चुका था जो उसी का इंतजार कर रही थी। उस वक्त वो सर्पनी इंसानी रूप में थी और वो सर्प और सर्पनी एक दूसरे का आलिंगन किए हुए थे। तभी उस काली शक्तियों के मालिक ने सोचा कि एक बार उस सर्प से भी विदा ले ली जाए। ये सोचकर वो सर्प महाराज के तंबू में बिना नौक किए अंदर चला गया। उसने देखा कि वो सर्प अपनी सर्पनी से अर्धनग्न अवस्था में चिपका हुआ था और उस सर्पनी ने भी केवल नाम मात्र के ही कपड़े पहने थे। एकदम से उस काली शक्तियों के मालिक को अपने तंबूनुमा घर में आया देख वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और वो सर्पनी उस सर्प महाराज के पीछे छुप गई क्योंकि उसने काफी कम कपड़े पहने थे। लेकिन तब तक वो काली शक्तियों का मालिक उसे देख चुका था। वो एक कमाल की खूबसूरत औरत थी, उसका जिस्म बेहद लचीला और चिकना सा था। वो काली शक्तियों का मालिक लार टपकाते हुए उसे देखने लगा। उसे अपनी सर्पनी को इस तरह से देखता देख उस सर्प महाराज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था और वो उस पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने ही वाला था कि तभी